सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम अंजुम।
वालेकुम सलाम नदीम।
अंजुम, आपने एक रिसेंटली वो एक आर्टिकल लिखा जिस पे मेरा तो बड़ा वो क्या कहते हैं इतराज़ है। आपने आर्टिकल का नाम ही लिखा इकोनॉमिक बुलशिट।
हाँ
है, मतलब ऐसे हाँ। लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं
नदीम? आमतौर पे नहीं इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वो जब वैसे प्रिंसटन के बड़े मशहूर फिलोसोफर ने एक किताब लिखी थी ऑन बुलशिट, तो ये टर्म काफी रिस्पेक्टेबल हो गई थी।
तो मेरी बात, मैं आपको नॉर्मली देखता हूँ, आप अच्छे खासे धीमे आदमी हैं, आप लड़ते नहीं, आप ये आपको इतना गुस्सा चढ़ गया कि आपने इकोनॉमिक बुलशिट ही लिख दी? क्यों क्यों, क्या हुआ आपको इतना गुस्सा चढ़ गया? बड़ा वो गुस्सीला आर्टिकल मुझे लग रहा था, बड़ा रेसी किस्म का आप लग रहा था, बस अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं गालियां देने से, बताएं क्या वजह है?
हाँ नहीं, वो मैंने वैसे ही अपना अपनी भड़ास निकालने के लिए लिख दिया था। मेरा ख्याल था कि वो अखबार वाले वो टाइटल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर उनको भी पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उसी तरह छाप दिया।
तो अब बुलशिट क्या है बताइए ना, क्या बुलशिट है? क्या आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही?
हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी तो जैसी चल रही थी वैसे ही चल रही है, मगर एकदम से पता नहीं किस वजह से अखबारात में और रिसालों में ये आना शुरू हो गया है कि इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई है और हमें पता ही नहीं चला।
अच्छा
हाँ,
क्या कह रहे हैं, उनकी क्या रीजनिंग है?
उनकी रीजनिंग ये है कि वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आया था उसने हेडलाइन में ही अपनी कह दिया था सारा कुछ, कि सारे मसाइल हल हो गए हैं, टेररिज्म भी खत्म हो गई है, पावर्टी भी खत्म हो गई है और बहुत बड़ी मिडिल क्लास आ गई है जो कि जिसका साइज की तुर्की की और शायद जर्मनी की आबादी से भी ज्यादा है और स्टॉक मार्केट भी 50% बढ़ गई है।
एक अंजुम, ये जो ये मेरा ख्याल आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक में काम शुरू किया है, ठीक है ना, तो आप किसी को अब ब्लेम ना करें। ये वर्ल्ड बैंक एक अब्सर्ड कंपैरिजन सारा वक्त करता रहता है, जब उनका मूड आए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आए, ये वो हेडलाइन के लिए वो अब्सर्ड एग्जांपल्स करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो सी है, ये बच्चों की पॉपुलेशन, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन इज मोर देन यू नो हॉलैंड जर्मनी व्हाटएवर। अंजुम, हॉलैंड की पॉपुलेशन तो लाहौर से छोटी है, ठीक है ना, बेलारूस से कंपेयर करें बेलारूस की पॉपुलेशन तो गुलबर्ग से छोटी है। हम ये भूल जाते हैं हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें तो ये होना ही है, ठीक है। इस मुल्क में तो ऑब्वियसली चीजें आपने कंपेयर करना लोगों से तो बड़ी निकलनी है, पर ये वर्ल्ड बैंक बार बार करता, तो फिर आप बाकियों को क्यों ब्लेम करते?
ब्लेम करने की बात नहीं है, मगर बात बेवकूफी की है, चाहे जो भी कर रहा है एब्सोल्यूट साइज पे कंपेयर करना जो है वो तो सरासर अहमकाना बात है, वो तो कोई अकलमंद आदमी इस तरह की बात नहीं करेगा। तो
खैर आ जाए इकोनॉमिक बुलशिट पे। देखिए जी, आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा है कि जी हमारी मिडिल क्लास बन गई है, इन्होंने कहा है कि डिमांड बढ़ गई है, इन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट चढ़ गई है, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब एक वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में आ गई है, इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं यहाँ आना, तो इसलिए हम लोग तैयार हो जाए क्योंकि यहाँ तो वो मैरियट में सारे बैठे हुए हैं बाहर के लोग, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल भर गया है, सारी सड़कों में गाड़ियाँ फिर रही हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, कुछ जगह तलाश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इस बात से खुश नहीं हैं?
नहीं, अगर ये वाकई हो तो मैं इस बात से खुश होऊंगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। कि जो जैसे तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा मुल्क है तो जाहिर है उसकी मिडिल क्लास भी जो है वो बड़ी होगी, मगर मिडिल क्लास का डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? जैसे तुमने अभी कहा कि बेलारूस जो है उसकी आबादी गुलबर्ग से भी कम है, सिंगापुर की आबादी जो है वो पूरी लाहौर से भी आधी है।
नहीं, आधी क्या, लाहौर से बहुत छोटी है,
बहुत छोटी है। तो
लाहौर सिर्फ 12-13 मिलियन का शहर है, लाहौर तो बहुत बड़ी चीज है, हॉलैंड से बड़ा है लाहौर, ठीक है ना।
हाँ तो वही मतलब सिंगापुर की जब 5-6 मिलियन होगी ना आबादी।
तो कराची जो उनसे, कराची तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के कोई 50 या 60% मुल्कों से बड़ा है।
हाँ और क्या, तो मैं ये सिर्फ कह रहा था कि उसकी मिडिल क्लास की साइज का तरक्की से क्या ताल्लुक है, सिंगापुर की मिडिल
नहीं,
क्लास
ये तो
कितनी
बात गलत है।
बढ़ी।
देखे ना, मिडिल क्लास जब बढ़ती है तो उसका मतलब कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है। जब
हाँ
कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है उसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो सेल्स लॉ चलती है कि सप्लाई, सॉरी दी रिवर्स, सॉरी आपसे रिवर्स,
हाँ
डिमांड क्रिएट्स ऑन सप्लाई। जब डिमांड बढ़ती है तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, गुड्स मार्केट
हाँ
में आती हैं, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है वगैरह वगैरह।
वो तो ठीक है नदी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगापुर की मिडिल क्लास कितनी बड़ी है। अगर 6 मिलियन को आबादी है तो आप कहें चलो 6 मिलियन मिडिल क्लास है, 6 मिलियन की मिडिल क्लास से भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हो सकता है जो सिंगापुर में है।
सही कह रहे हो।
हाँ तो फिर हमारा जो है वो, अगर हमारी मिडिल क्लास जर्मनी से बड़ी है तो हम दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में से क्यों नहीं है,
गुड
इस चीज
पॉइंट,
पे गौर करना चाहिए ना।
वेरी गुड पॉइंट कि साइज ऑफ मिडिल क्लास जो है अगर बन रही है। अच्छा, ये मिडिल क्लास क्यों बन रही है? देखिए, ये मिडिल क्लास भी जो है ना, ये जो सारा एनालिसिस है ये भी मेरा कसूर है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये पेपर जो है मैंने PID में करवाया था एक लड़की है दुरे नयाब से, ठीक है, और दुरे नयाब से मैंने पुश कर करके एक मिडिल क्लास का साइज का पेपर बनाया था। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में 10 साल लगे हैं लोगों को समझने में कि वो पेपर था, ठीक है, और उस बेचारी का नाम भी कोई कोट नहीं करता। पेपर तो दुरे नयाब ने किया था और पेपर PID में हुआ था और मिडिल क्लास का साइज वहाँ एस्टिमेट हुआ था पहली दफ़ा, और वो जो भी अब बढ़ा ले वहाँ से बात चली। फिर हमने फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ में मिडिल क्लास की बात की, हमने सारे ये जो कंज्यूमर गुड्स के लोग हैं इनको बुलाया, इनसे पूछा आपकी डिमांड क्या है, ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी डिमांड 25-30% बढ़ रही है सालाना, क्योंकि लोग कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं। देखिए, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, ये चीज़ें जो कि बहुत तेज़ी से लोग खरीद रहे हैं, यू नो, स्मॉल टाइम फर्नीचर, स्मॉल टाइम कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, हाइपर की जब आप दुकान में चले जाएं हाइपर भरा होता है, तो यस मिडिल क्लास तो बढ़ रही है। और क्या कहते हैं, अब इनको रिसर्च की देर से पता, दूसरी चीज़ मिडिल क्लास बस देख के ये शुरू हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वी नीड टू प्रूव कि ये मिडिल क्लास इंजनों पर। मुझे एक बात बताएं, मिडिल क्लास बढ़ी क्यों है?
मिडिल क्लास नदीम इसलिए बढ़ रही है कि एक तो आबादी बढ़ रही है।
या आबादी बढ़ने से तो कुछ नहीं होता, आबादी तो गुर्बत में भी रह सकती है।
हाँ नहीं तो गुर्बत तो नहीं है इस मुल्क में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल एक बास्केट केस है, ठीक है ना। मतलब लोग शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको स्कूल जाना है, उनको अस्पताल जाना है, तो अब हर जगह पे स्कूल खुल रहे हैं, तो स्कूलों की देखो ना कितनी कितने प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्री है स्कूलों की। इसी तरह हेल्थ इंडस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज नहीं है, मगर वो मार्जिन पे ग्रो कर रहे हैं ना, जो एक तरह से
नहीं, आप मिडिल क्लास का एक चीज़ मेरा ख्याल भूल रहे हैं। मेरा थीसिस ये है कि मिडिल क्लास इसलिए ग्रो कर रही है कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारी इकोनॉमी में, मेरा ख्याल, आप मुझे करेक्ट करें इफ़ यू डोंट, इफ़ यू डिसएग्री, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम कोई नहीं। हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल इकोनॉमी अच्छी तेज़ी से चल रही है, ठीक है, वहाँ डिमांड भी है, वहाँ इनकम भी है। जो मसला है हमारा है हुकूमत का मसला है। हुकूमत जो है वो बार बार डंडे मार के गलत पॉलिसी बना के इनफॉर्मल इकोनॉमी को मारने की कोशिश करती है, जैसे कि बैंक में से कैश निकालने पे आपने टैक्स लगा दिया, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पे आपने टैक्स लगा दिया, जैसे कि आपने जनाब कहा कि जी ये जो भी कुछ बंदा काम करता है उसे विदहोल्डिंग टैक्स ले लो बिजली के बिल में से। तो जब वो करती है तो मिडिल क्लास इकोनॉमी और बढ़ जाती है दूसरी साइड पर, उधर भाग जाती है, ठीक है, सॉरी इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ जाती है और भाग जाती है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? मेरा थीसिस ये है, वो इस वजह से, एक तो हुकूमत से भागती है, दूसरी चीज़ ये रेमिटेंसेज माशाल्लाह काफ़ी हद तक डिमांड क्रिएट कर रही है। रेमिटेंसेज जो है वो एक किस्म की इकोनॉमी में आके मिडिल क्लास बना रही है। जो बंदा बाहर जाता है, घर पैसे भेजता है, वो ख़ानदान कुछ ना कुछ, चलो TV ले लेता है, कुछ थोड़ा सा खुशहाली आ जाती है, तो एक किस्म का मिडिल क्लास में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसमें भी चले, अगर कुछ भी हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो फिर भी उनके पास इनकम तो आ रही है ना, और इनकम तो
हाँ।
बढ़ रहे हैं ना, तो उस वजह से मिडिल क्लास तो बढ़ रही है, ज़रूर बढ़ रही है, ठीक है ना, क्या आप इसे एग्री करेंगे?
हाँ, मैं एग्री करूंगा कि वो मिडिल क्लास बढ़ रही है, और उसकी वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, मगर इसमें कुछ चीज़ों को मेरे ख्याल में जहन में रखना चाहिए। दो तीन चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि ये जिस पे मैंने इकोनॉमिक बुलशिट लिखा था उसमें ये था कि देखें रिमिटेंसेस कितनी हो गई हैं, 10 बिलियन साल की वगैरह वगैरह। तो मेरा पॉइंट ये था कि रिमिटेंसेस जो है मेरे जहन में तो वो एक नेगेटिव एलिमेंट है।
क्यों?
वो इसलिए कि हम अपने मुल्क में मुलाजमत नहीं क्रिएट कर सक रहे जिसकी वजह से लोग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में जाके काम कर रहे हैं जहां से वो पैसे भेज रहे हैं ताकि उनके घर वाले जो हैं वो सरवाइव कर सकें। अगर हम केपीके की इकॉनॉमी,
नहीं आप सही कह रहे हैं, तो आपका कहने का ये मतलब है कि ये तो फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले कही थी कि ये हुकूमत का प्रॉब्लम है। हुकूमत यहाँ नौकरियां बनने नहीं देती, इसलिए लोग बेचारे मारे मारे एजेंटों को ज़्यादा फीस दे के जाली तरीके से बाहर भागते हैं रोते हुए, और वहाँ से आके वो रिमिटेंस भेजते हैं, बेचारे बुरे तरीके से रहते हैं अपनी फैमिली को रिमिटेंस भेजते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है
नदीम, सिर्फ वो गरीब लोग नहीं है जो एजेंटों को पैसे दे के भेज रहे हैं, यहाँ की इलीट भी जो है अगर तुम उनसे पूछो तो वो अपने बच्चों को यही मशवरा देती है कि बाहर चले जाओ।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट करी माशाल्लाह ये खुश आने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और कौन सा ब्लूमबर्ग और कौन सा, मतलब एक किस्म का चर्चा चल गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये ठीक। अच्छा दूसरी जो उनसे वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट, आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से आपको इख्तिलाफ है, स्टॉक मार्केट हमारी बहुत चढ़ गई है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड है। अब बताइए क्या आपका इससे क्या इख्तिलाफ है?
मेरा इख्तिलाफ ये है नदीम के स्टॉक मार्केट जो है थोड़ी सी भी जिसने पिछले सालों पे नजर डाली हुई हो उसने उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में बबल्स होते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, स्टॉक मार्केट इरेशनल एग्जूबरेंस से ऊपर चढ़ जाती है। तो स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे जाना हर रोज हर महीने जो है उसका इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल से बहुत कम ताल्लुक होता है, ठीक है। पहली तो बात यह है, दूसरी बात यह कि ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, कोई अमेरिका की स्टॉक मार्केट नहीं है। मेरा ख्याल में इस स्टॉक मार्केट की अगर आप सारी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें तो मेरा ख्याल में वो एप्पल की कैपिटलाइजेशन से कम होगी।
नहीं एप्पल की तो बहुत ज्यादा,
वही मैं कह रहा हूं ना कि 5-6 गुना होगी पाकिस्तान की टोटल।
चलें हिसाब लगाते हैं, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 20% ऑफ GDP,
शायद 100 बिलियन के करीब होगी मेरा ख्याल।
हाँ जी कितनी?
100 बिलियन डॉलर।
हाँ अभी हिसाब लगाते हैं, मेरा ख्याल है कि सब मिला मिलू के ये शायद हो जाएगी, नहीं तो अब ज्यादा करें ना, एप्पल की जो मार्केट कैप है वो हमारे GDP से ज्यादा,
वही मैं कह रहा हूँ ना कि
वो तो हमारे GDP से बस ज्यादा है। बट देखिए अगर हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि हमारी टोटल साइज ऑफ स्टॉक मार्केट यानी कि जितनी कंपनियां वहां लिस्टेड हैं अगर उन सब का हम जो उनकी लेट्स से जो बेचने वाली कीमत है अगर हम सबको इकट्ठा कर दें और जमा कर लें तो हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू बनेगी, मुझे अगर याद शायद अब बढ़ गई हो बिकॉज ऑफ द के प्राइस जो इंक्रीज की है, तो चले 25% GDP का लगा लेते हैं, ठीक है। अगर 25% GDP का है तो हमारा GDP तकरीबन 350 बिलियन है, ठीक है। तो 25% कह रहे हैं हम तकरीबन 90 बिलियन के करीब हो गया हमारी स्टॉक मार्केट का GDP। जी
मेरा अंदाजा था 100 बिलियन,
चले 100 बिलियन हो गया, ठीक है ना जी। तो 100 बिलियन अगर होगी हमारी स्टॉक मार्केट तो एप्पल तो सर 700 बिलियन है। एप्पल तो हमारे मुल्क से दुगना है।
वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी छोटी सी स्टॉक मार्केट है, इसमें जो है इसके ऊपर नीचे जाने में इतनी छोटी स्टॉक मार्केट में जरा सा पैसा कहीं से आ जाए तो ये ऊपर चढ़ जाती है। तो अगर हम जैसे अभी ये हुआ कि जमीन की बेचो फरोख्त पे हुकूमत ने कुछ जो थी पाबंदियां आयद कर दी तो काफी मुमकिन है कि लोगों ने वहां से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल दिया।
अच्छा ये भी गुड पॉइंट, गुड पॉइंट।
दूसरी ये कि जो बाहर का पोर्टफोलियो कैपिटल है बड़े बड़े हेज फंड्स हैं और जो इस तरह के फंड्स हैं अमेरिका में उनके लिए मार्जिन पे 1-2% उससे भी कम अगर वो बहुत किसी रिस्की चीज में डाल दें इस ख्याल से कि भाई अगर चढ़ गई तो हमारे पैसे बन जाएंगे, अगर डूब गई तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए लॉस। तो उनके लिए ये एक छोटा सा खेल है जो साइड पे है, वो पैसे आते हैं, अगर वो चढ़ जाती है वो निकाल लेते हैं, वो गिर जाती है। तो इसका हमारे इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, उनसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। उसको हर शख्स जो है, पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट भी जो हैं, वो उन्होंने ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट 25% ऊपर चली गई तो इसका मतलब है कि हमारा जीडीपी भी 25% ऊपर चला
है। अंजुम, आपको एक और बात पता है, आप ये भी और करें, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा शेयर किसका आपको पता है?
किसका है?
ओजीडीसी।
हाँ,
ये क्या कंपनी है आपको पता है?
ऑयल एक्सप्लोरेशन।
और किसकी है ये?
ये हुकूमत की।
हाँ, तो ये सरकारी कंपनी है, ये तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं।
हाँ,
ठीक है।
हाँ,
मैंने देखा है, मैंने एक दफा एनालाइज करवाया था, स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी 5-6 कंपनीज हैं वो सब हुकूमत की है। ठीक है, उनकी तो मतलब उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हुकूमत की कंपनी है, ठीक है, हमें पता ही नहीं क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो है उनकी तो अकाउंटिंग भी नहीं हमें पता ठीक है कि नहीं है। ठीक, जो दूसरी कंपनी है वो मल्टीनेशनल है, नेस्ले हुई, अपना यूनिलीवर हुई वगैरह। ठीक है, अगेन उनका तो मतलब कोई समझ ही नहीं आती क्या मार्केट वैल्यू है।
और नदीम, मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां होंगी, मेरा ख्याल है 80-90% जो हैं वो प्रॉब्ली लॉस मेकिंग होगी, जिनके कोई ट्रांजैक्शन खास होते ही नहीं।
नहीं, जो मजेदार बात है वो ये है कि बेशतर कंपनी है डेड कंपनी, जो ट्रेड ही नहीं करती।
हाँ, हाँ।
बेशतर कंपनी है तो ट्रेड ही नहीं करती, ठीक है ना।
यही 8-10 कंपनियां हैं प्रॉफिट मेकिंग, जो कि जिनमें से कुछ हुकूमत की हैं, कुछ मल्टीनेशनल्स हैं। और उसमें भी मल्टीनेशनल में भी नदीम, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल आए थे जिन पे मैंने तनकीद की है, इसमें था कि देखें कितनी जबरदस्त इकोनॉमी है कि नेस्ले का जो है वो प्रॉफिट डबल हो गया है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर हुकूमत साफ पानी लोगों को मुहैया ही ना करे तो वो बेचारे मजबूर हैं नेस्ले का पानी लेने पे। तो इसमें कोई ये आपकी इकोनॉमी की डायनामिज्म नहीं दिखा रही है, तो ये दिखा रही है कि लोग जो हैं उनको बेसिक सहूलतें मिल ही नहीं रही। अगर साफ पानी नलके से मिले तो लोग नेस्ले क्यों पिए? तो इस तरह की जो अनामलीज हैं जो साफ नजर नहीं आती, खाली ये कहना कि देखिए नेस्ले का प्रॉफिट डबल हो गया है, वो उसके पीछे अगर आप जाके देखें तो आपको उसी तरह की चीज नजर आती है कि रिमिटेंस
इसी पे मैं आगे बात करूं। फॉर एग्जांपल, हमारी स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां बड़ी प्रॉफिटेबल और चल रही हैं उन पे जरा बात कर लें। देखिए फॉर एग्जांपल, होंडा और टोयोटा की बड़ी यहाँ प्रॉफिट है। पर आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम गाड़ियों पे, हमने सारी मुल्क की गाड़ियों पे बैन लगाया हुआ है कि बाहर से कोई गाड़ी नहीं मंगवा सकता, अगर कोई मंगवाएगा तो इतनी महंगी होगी कि फायदा ही कोई नहीं। जैसे कि अब यहाँ अंजुम, टोयोटा कैमरी जो है वो 1,30,00,000 की आती है।
अच्छा,
आपको याद है अमेरिका में कितने की है? $30,000 की है। अच्छा, यानी कि 30,00,000 की है, यहाँ 1,30,00,000 की मिल रही है। अब कौन लेगा, किसी का दिमाग खराब है? ठीक है, तो उनको लेनी पड़ती हैं ये जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं। ठीक है, तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट होना ही होना है।
हाँ,
ठीक है ना। और फिर वो प्रॉफिट कैसे हो रहा है कि उनका ऑन है, आपको पता है ऑन क्या है? ठीक है ना जी, ऑन है कि जी सारे पैसे जमा करा दो और साल 6 महीने साल इंतजार करो। तो यही कि वो प्रॉफिट आप बैंक में ही रख दें, ट्रेजरी बिल्स में ही रख दें, तो आपको 7-8% तो आ रहा है ना। ठीक है, 7-8% आपने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो ये निजाम है अंजुम साहब आपका, तो इस तरह प्रॉफिट तो होना ही है। इसी तरह बैंकों का ले लें, बैंक स्टॉक्स हमारे बड़े चढ़े हैं। ठीक है, अब बैंकों का स्टॉक भी बड़ा मजेदार है कि जी बैंकों का स्टॉक ये है कि जी आपके 4-5 बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स तो प्रॉफिट नहीं बनाते, बड़े बैंक्स प्रॉफिट बनाते हैं। बड़े बैंक कैसे प्रॉफिट बनाते हैं? उनके पास मार्केट एडवांटेज है, वो आपको और मुझे डिपॉजिट तो बहुत कम रेट देते हैं। ठीक है, बल्कि वो और हुकूमत से भी पैसे ले लेते हैं, हुकूमत उनको बहुत बड़ा डिपॉजिट देता है। ठीक है, वो पैसे ये जमा करके वो जाके ट्रेजरी बिल्स में डाल देते हैं और ट्रेजरी बिल्स में उनको माशाल्लाह 8-10% मिल जाता है। डिपॉजिटर्स से 4% लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये लेजी बैंकिंग है, इसमें तो काम ही कोई नहीं।
और लेंडिंग किस रेट पे करते हैं?
लेंडिंग तो 15% पे करते हैं। आप मॉर्गेज ले जाए आपको 18 पे देंगे, ठीक है ना। तो जब इतने बड़े स्प्रेड्स हों और ट्रेजेडी अंजुम बहुत बड़ी है, ये प्लीज बताइए कि इस चीज पे कोई ना कोई पेपर लिख रहा है, ना कोई काम कर रहा है, ना कुछ। आप और मैं बात करके बैठ जाएंगे, ना कोई इस पे लिखेगा, ना सुनेगा, ना कुछ, तो क्या करें?
हाँ, हाँ, बस वो ये देख रहे हैं ना कि देखें कितने प्रॉफिटेबल है, उसके पीछे नहीं जाके देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट जो है किस तरह से, किस वजह से बन रहा है, कैसे बन रहा
है। अब तीसरी चीज आपको बताऊं बड़ी मजार, अब आप ले लें हमारी फार्मास्यूटिकल कई बड़ी प्रॉफिटेबल है। अब आप मुझे आप पता नहीं नोटिस करते ही नहीं करते, मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक दो साल में हमारी दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं।
अच्छा,
काफ़ी बढ़ गई हैं, ठीक है। मुझे याद है जब मैं प्लानिंग कमीशन में था, ये आते होते थे हमारे पास रोज लॉबी करने के लिए, यार हमारी दवाइयों की कीमत बढ़ने नहीं देते, तुम बढ़ने दो ये वो, ठीक है। मैंने कह रही है पब्लिक हेल्थ का इशू है, और आप कौन सी कोई रिसर्च कर रहे हैं? आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो बढ़ाएं ना। आप तो माशाल्लाह सिर्फ एक मॉलिक्यूल खरीद के बस टैबलेट्स बना रहे हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। अमेरिका में वो कीमत लेते हैं रिसर्च की, आपके पास रिसर्च कोई नहीं, तो आप अमेरिका वाली कीमतें कैसे ले रहे हैं? अब वो उन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि सरकार के पास जाते हैं, सरकार उनको कीमत की इजाजत देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में 80% कंपनीज हैं जो ट्रेड ही नहीं करती, ऑलमोस्ट बंद पड़ी हैं, इन द सेंस के कई बंद भी हो गई हैं पर स्टॉक मार्केट में लगाई जाते हैं जस्ट टू शो के हमारे पास कंपनी है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो OGDC और जो बड़े कंपनियां पैकेजेस और ये और वो, इनके आप शेयर लेने जाए आपको मिलते ही नहीं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, ठीक है। और अगर मिलते हैं तो एकदम कीमत चढ़ जाती है, वो जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कंटिन्यूअस प्राइसिंग, वो कंटिन्यूअस प्राइसिंग यहाँ नहीं है, यहाँ जंप मार जाती है प्राइस अगर आप डिमांड करें। तो इसलिए ये एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मार्केट जो है वो जरा समझाएं ना हमें और बताएं कि यहाँ है कि नहीं मार्केट एफिशिएंसी जो थी। सर
मेरे ख्याल में जो है अभी जो ये स्टॉक मार्केट चल रही थी और इस पे काफी बातें हो रही थी, तो SECP ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि इसमें जो है वो इंटरनल जो इश्यूज हैं इनएफिशिएंसी के, मेल गवर्नेंस के, जो ये बदले का सिस्टम था, तो इसमें तो बहुत मसाइल हैं। पहले भी एक दफा जब ये स्टॉक मार्केट का कुछ हुआ था तो मुझे याद है कि काफी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो इसमें तो मेरे ख्याल में तो काफी इनएफिशिएंसीज हैं, मगर तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाह रहे थे।
देखिए जी, जो स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी टेस्ट आपको याद होगा जो होता है, बेसिकली बड़ा सिंपल कि जी अगर हम देखें तो प्राइस एफिशिएंसी जो है वो इस तरह डिफाइन होती है कि कोई मेरे पास फार्मूला नहीं है जो जिससे मैं पैसे बना सकूं स्टॉक मार्केट पे। अगर मैं कोई फार्मूला ढूंढ सकूं जिसमें आज मैं पैसे डाल के और कल पैसे बना सकूं तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं तो माशाल्लाह बिल गेट्स से भी ऊपर चला जाऊंगा। तो मार्केट एफिशिएंसी के टेस्ट होते हैं रिग्रेशन बेस्ड, जिसके अंदर हम
रैंडम वॉक वाला है,
बिल्कुल बिल्कुल रैंडम वॉक वाला, कि हम देखते हैं कि क्या मैं कल पैसे बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ठीक है जी। तो वो जो चीज़ है वो टेस्ट होते हैं, और मुझे याद है एक बंदा नासिर खिलजी, उसने काफ़ी साल पहले किया था और उसको नहीं ठीक मिल रहा था, उसके बाद वो उसने फजल ने PID में कुछ किए थे, मुझे वो उसके रिजल्ट्स नहीं याद, आई शुड हैव लुक्ड देम अप बिफोर आई डिड दिस, बट आई थिंक फजल के भी रिजल्ट्स में मार्केट एफिशिएंसी नहीं प्रूव हो रही थी, और मार्केट एफिशिएंसी हमारी स्टॉक मार्केट, अच्छा द अदर वे टू लुक एट इट आल्सो, जो मार्केट एफिशिएंसी का टेस्ट है कि क्या मैं मार्केट में इतने स्टॉक्स इकट्ठे कर सकता हूँ टू मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो टू कवर ऑल माई रिस्क, जरा इसको रिफ्रेस करें ना, कि मैं ऐसा पोर्टफोलियो बना सकूँ, ठीक है, जो कि मेरे पैसे सेफ रहें, मार्केट ऊपर नीचे जाए मैं उसके साथ साथ ही चलता रहूं, ठीक है, ये नहीं कि कोई उसका। अच्छा, वो भी हमने टेस्ट किए थे, उसमें भी मार्केट का एफिशिएंसी का टेस्ट नहीं नज़र आ रहा था। खैर, अब ये देर की बात है, शायद नई मार्केट के टेस्ट होने चाहिए और देखने चाहिए, अगेन रिसर्च की बात है, कौन लोग कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे, उम्मीद है कुछ लोग कर रहे होंगे तो हमें फ़ोन करेंगे बताएंगे भाई आपको ये नहीं पता, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी एक इकोनॉमिक रिसर्च की बात है कि नज़र आना चाहिए कि क्या हमारे रिसर्चर्स इस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, ठीक। बट आ जाते हैं वापस चीज पे, इकोनॉमिक बुलशिट, तो आप कह रहे हैं ये इकोनॉमिक बुलशिट है कि इन्होंने हाइप क्रिएट कर, दूसरी तरफ تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں, جو ہم ابھی زیادہ بات نہیں کریں گے اس پہ, سیپریٹ پروگرام کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اب ہم تو چین کے وہ فیوریٹ بچے کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں, آپ کو تو اردو آتی ہے بتائیں نا, کہ ہم چین کا لاڈلا بیٹا بن گئے,
لاڈلا
ٹھیک ہے نا, لاڈلا بیٹا بن گئے, ٹھیک ہے, تو اب ماشاء اللہ ابو حضور کا ہمارے ہاتھ پہ, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے, تو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیٹے کو, جیسے اگر بادشاہ وہ اکبر بادشاہ کا بیٹا, سب اس کو آ کے اس کو پیسے دیں گے, اس کے پیچھے بھاگیں گے وغیرہ وغیرہ, تو ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم لاڈلا بیٹا بن گئے تو اب سب ہمارے پاس آئیں گے. پر مجھے یاد ہے اس پہ بھی آپ نے کوئسچنز ڈال دیے تھے, کیا آپ کو مطلب, آپ میرا خیال ہے نئے سے آ رہے ہیں, ہے نا,
نہیں
میں صرف سوال پوچھ
رہا ہوں, سوال تھا کہ جو بھی اس پہ کوریڈور پہ اعتراض کرتا ہے اس کو اس کے نام سے کوئی پروجیکٹ وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ چلیں جو ہے کوئٹہ ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا کوریڈور سے کیا تعلق ہے.
بالکل,
میں یہ سوچ رہا تھا میں بھی زیادہ اعتراض کروں گا تو مجھے بھی شاید کوئی پروجیکٹ مل جائے کہ آپ کے ڈینچر جو ہیں وہ چینی دندان ساز سے بنوا دیں گے.
ویری گڈ ویری گڈ, پر یہ دیکھیں اب آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی, آپ کا مطلب ہے کہ آخر میں آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ اگری کر رہے ہیں
کیا
کہ یہ فیک نیوز ہے؟
ہاں
مطلب اتنے بڑے بڑے نام, وال اسٹریٹ جرنل ہوا, نیو یارک ٹائمز ہوا, بلومبرگ ہوا, اس جیسے اگر یہ ادارے اس قسم کا کام کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل اخباروں میں تصویر خبر لگوانا بڑا آسان کام ہے, کوئی بھی پبلسٹی فرم ہائر کر لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے,
بالکل,
تو ان کے اسٹینڈرڈ بھی بہت اب گر گئے ہیں, تو فیک نیوز والی بات ہی ہوگی نا یہ,
ہاں
ہے
نا, ہاں بالکل بالکل. مجھے تو یہ حیرت تو رہی ہے ندیم کہ جو لوگ مطلب یہ کہ اتنی کم انفارمیشن ہے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سی پیک جو ہے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, جب تک کہ انفارمیشن نہیں ہو اس کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہو رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے اور اگر آپ فیزیبلٹی اسٹڈی کرائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے جب پیسے خرچ کر دیے تو فیزیبلٹی اسٹڈی آخر میں کریں گے.
بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح,
یہ تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا.
پر اچھا اس کو بیلنس آف بھی کر دیں تھوڑا سا, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے اور میں تو سرٹنلی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی اکانومی ڈوبنے والی ہے یا بہت گڑبڑ ہے یا کچھ, یہ تو ایسی بھی کوئی صورت حال نہیں ہے.
نہیں
ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے کہ جی ہماری بہت ہی حالت اچھی ہو گئی ہے, چلیں اچھی سے ڈیفینیشن آپ کی کیا ہے, کیوں آپ آبجیکٹ کر رہے ہیں, کیوں آبجیکٹ کر رہے ہیں, کیا کیا اس میں مسئلہ ہے؟ ہماری اکانومی اس سال 5% گرو کر جائے گی, اگلے سال شاید 6 پہ چلی جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے؟ یہ
دیکھو کتنے سال سے میرا خیال ہے تم نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو جتنے لوگ ہر سال لیبر فورس میں آ رہے ہیں اگر آپ کو ان کو ڈھنگ کی ملازمتیں دینی ہیں تو کم سے کم 7% تو اسی کے لیے چاہیے,
اور سوری ایک سال نہیں چاہیے,
ہاں
ایک سال نہیں چاہیے, مسلسل چاہیے, مسلسل, مسلسل صحیح لفظ ہے کہ نہیں, یا کنٹینیوس کو کیا کہوں, مسلسل چاہیے ٹل 2050.
اور 5% پہ خوش ہونا جو ہے یہ تو مجھے نہایت عجیب بات لگتی ہے کہ 5% پہ آپ خوش ہو رہے ہیں.
بالکل,
اس کا تو یہ مطلب ہے, اور اسی لیے پھر جو ہے ہر شخص اس ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے کیونکہ یہاں ملازمت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ ایم اے کر کے بی اے کر کے جو ہے کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں, تو کس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہاٹ اکانومی ہے اور یہاں
یہ جو بات ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں, مطلب میں حیران ہوتا ہوں ہمارے اکانومسٹ آپ کے میرے دوست وہ کہتے ہیں کہ جی گروتھ 5.2 نہیں ہے 4.8 ہے, یا 4.8 نہیں ہے 5 ہے. کیا گروتھ ہم اتنی پریسیشن سے میجر کر سکتے ہیں کہ 4.8 اور 5 میں فرق آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا ہے؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
मतलब स्टेटिस्टिक्स में क्या ऐसी कोई चीज होती है? बाप ने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, खुदारा स्टेटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है।
बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन होता है।
हाँ, हम ऐसे नहीं कह सकते 4.8 और 5.2 में फर्क ही कोई नहीं, बहस किस बात की, ठीक है ना जी, बहस किस बात की। तो ये दूसरी चीज ये है कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूब नहीं रही, कोई बुरी हालत नहीं है, ठीक है। हाँ, 4-5% पे मैं भी मानता हूँ ग्रो करती रहेगी। मैं तो कहता हूँ हुकूमत कुछ भी ना करे तो इस पर ग्रो करेगी।
हाँ नदीम, ये बात समझने की है कि इकोनॉमी को डुबाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है।
हाँ, बहुत अच्छी बात की।
इसलिए कि जो लोग हैं उन्हें तो जिंदा रहना है ना। वो और ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लोग उगाएंगे खाएंगे, जो शख्स जूते बना रहा है वो जूते बनाता रहेगा, ये सब चीजें जो हैं ये तो चलती रहती हैं। इनको खत्म करना, जो एक बॉटम लाइन इकोनॉमी है आपकी, उसको खत्म करने के लिए बहुत कोई हिटलर टाइप आदमी चाहिए होगा।
और इसको उठाना,
ग्रो करना जो है वो कमाल की बात है।
और वो उसको उठाना 7-8% और एक साल पे शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ,
अगर आप 20-30 साल कर सकें तो फिर माशाल्लाह आप कहेंगे नहीं, हाँ भाई मैं तालियां बजाएं। एक साल पे ताली बजाने का क्या फायदा है? एक साल तो हो चुका है हमारा, कई दफा हो चुका है, ठीक है,
कई दफा हो चुका है। बाहर से थोड़े पैसे आ जाएंगे, वो ऊपर चली जाएंगे।
तो जिस चीज पे आप और मैं खराब, मैं तो इकोनॉमिक बुलशिट बिल्कुल नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह तालियां बजाता हूँ मैं। जब हुकूमत बोलती है मैं तालियां बजाता हूँ, क्यों, हमारा तो रीत यही है ना। आप सिर्फ ये इख्तलाफ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो है चीज़ कि हम मायूसी बिल्कुल नहीं कर रहे, फैला रहे ना, हम कह रहे हैं कि गलत बात है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको पॉलिसी अच्छी देखनी है और अगर आपको अपनी मुसीबतों से निकलना है तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें नज़र आए कि 7-8% ग्रोथ अगले 20-30 साल होगी।
हाँ,
और वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही,
वो नहीं नज़र आ रही
है ना, ये चीज़ें। ये मसला है। तो और एनीथिंग एल्स बताइए।
नहीं बस यही है, ये बात समझने की है कि 7-8% पे जाने के लिए क्या चीजें करने की जरूरत है। और वो तुमने पहले कह दिया कि उसमें हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी वो है, कंस्ट्रेनिंग है, डिस्ट्रक्टिव है ग्रोथ के लिए, कि अगर वो उन्हीं पॉलिसीज को थोड़ा रिफॉर्म कर लें और प्रायोरिटी सही कर लें तो
वो। तो अंजुम, आपको याद होगा हमने इस पे 2-3 प्रोग्राम किए ग्रोथ पे, और इंशाल्लाह और भी करेंगे क्योंकि इसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत है। पर आज ठीक है, चलिए आपने इकोनॉमिक बुलशिट पे रोशनी डाल दी, ठीक है।
मैं एक इकोनॉमिक बुलशिट पे एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ जी, वो ये जो मिडिल क्लास के साथ साथ बहुत लोग इस पे वो कर रहे हैं, अपना एतमाद कर रहे हैं कि बड़ी यूथफुल पॉपुलेशन है, यूथ बल जा गया है, तो यही जो है हमें आगे ले जाएगा। तो उस पर मैंने ये कहा कि हमने यूथ बल तो है मगर हमने उनको पॉटी ट्रेन नहीं किया।
सही कह रहे
ना, उनकी तालीम में इन्वेस्ट किया ना उनकी सेहत में इन्वेस्ट किया, तो यूथ बल्ज खुद ब खुद तो कहीं हमें नहीं ले जाएगा।
नहीं, यूथ बल्ज का एक और भी प्रॉब्लम है, यूथ बल्ज यूथ डिविडेंड बनने के बजाय यूथ डिजास्टर भी बन सकता है।
बॉम्ब बिल्कुल बन रहा है,
ठीक है नहीं? वो अनफॉर्चुनेटली जिस यूथ को खाने को ना मिले तो हिस्ट्री में बड़े वाजे तौर से ये नजर आता है कि वो यूथ फिर बुरी तरफ भी जा सकता है, डाके भी डाल सकता है, चोरी भी कर सकता है, और खुदा ना खास्ता वो टेररिज्म की तरफ भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अब अगर एक बंदा एम्प्लॉय ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो अंजुम बेसिस ही वो ये है कि मेरी खुशहाली आपकी खुशहाली सोशल कॉन्ट्रैक्ट कायम रखती है।
हाँ।
अगर मैं भूखा मर रहा हूँ तो मैंने आपकी खुशहाली मैं देख नहीं सकता, फिर
हाँ।
फिर मैं आपके गले को ज़रूर आऊँगा, ठीक है ना। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही है ये, कि जी माशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के रहें जहाँ हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, किसी तरीके से हुकूमत के थ्रू। अब सारी बहस जो है वो यही है कि आप कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कायम रखेंगे, और वो हमारे यहाँ हो भी नहीं रही और ना होनी होती
है। इस पे जो तुमने एक दफा बात की थी ना, वो मेरा ख्याल है बहुत अहम और प्रोफाउंड थी। वो ये थी कि अगर आप मुल्क को एक कश्ती की तरह देखें ना, तो उसमें जो वो हैं अपने पैसेंजर्स हैं वो सिटीजन हैं, और जो उसका कैप्टन है वो उसकी हुकूमत है। तो अगर वो कैप्टन को ये पता हो कि यू नो वी हैव टू सिंक और स्विम टुगेदर, तो उसका एटीट्यूड फर्क होता है।
बिल्कुल सही।
और अगर उसको ये ख्याल हो कि ये जब डूबने लगेगी तो मैं टिकट लेके दुबई चला जाऊंगा, तो सारी हमारी रूलिंग क्लास, ये एक अजीब रूलिंग क्लास है जो सारे के सारे के घर उनके बाहर है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तारा, तुमने ये भी कहा था कि उनका सारा जो उन्होंने अपना कैपिटल है वो बाहर रख लिया, सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो यहाँ रखा हुआ है।
वो बड़ा सिंपल है जी, सिर्फ यहाँ वो उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, एसेट्स वहाँ हैं, लाइबिलिटीज यहाँ हैं, टिकट जेब में है, बस बैठे हुए आराम से। ठीक है, उनको पता है कि यहाँ जब कुछ भागेंगे यहाँ तो सिर्फ लाइबिलिटीज रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक,
उस तरह की जो रूलिंग क्लास है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाएगी?
बिल्कुल,
वो तो तैयार है कि बस आखिरी वक्त तक हम एक्सट्रैक्ट करते रहे।
अच्छा, ये बात हमें अब अगले प्रोग्राम में करनी पड़ेगी, ये बहुत पेचीदा हो गया, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ठीक है जी,
चलो,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।